بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، اپنے آج کے کاریکرم کا آرمبھ ہم سورہ شمس کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا شرح پراپت کیا ہے سورگیے محمد صدیق منشاوی نے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، سوگند ہے سوریہ کی اور اس کے پرکاش کی اور چندرما کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ دھرتی کو پرکاشت کر دے، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آکاش کی سوگند اور جس نے اسے اٹھایا، اور دھرتی کی اور جس نے اسے بچھایا، اور آتما کی اور جس نے اسے ٹھیک کیا، پھر اسے برائی اور بھلائی کا مارگ دکھا دیا، निश्चित रूप से वही सफल रहा जिसने अपनी अंतरात्मा को पवित्र बना लिया, और दुर्भाग्य हुआ जिसने उसे पापों से दूषित कर लिया। समूद जाति ने अपनी उद्दंडता के कारण पैगंबर को झुटलाया। जब उनमें का सबसे बड़ा दुर्भागी उठ खड़ा हुआ तो अल्लाह के पैगंबर ने उनसे कहा, अल्लाह की ऊंटनी और उसके पानी पीने के स्थान का ध्यान रखना। किंतु उन्होंने उसे झुटला दिया और उस ऊंटनी की हत्या कर दी, तो उनके पालनहार ने उनके पाप के कारण उन्हें दंडित किया और उन्हें तथा उनकी बस्ती को मिट्टी में मिलाकर बराबर कर दिया, और उसे इस दंड के परिणाम का कोई भय नहीं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, आज सोमवार है, जुलाई की 11, जिलहिज की 11 और तीर माह की 20 तारीख। कार्यक्रम का आरंभ समाचारों से होगा। समाचारों के बाद राजनीतिक चर्चा पेश की जाएगी। राजनीतिक चर्चा के उपरांत आप विश्व दर्पण प्रोग्राम सुनेंगे। सभा के अंत में हम आपको साप्ताहिक कार्यक्रम सुनवाएंगे, सेहत का राज। तो दोस्तों, ये थी रूपरेखा। आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है। अब आप मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। हमास का कहना है कि बाइडेन की इसराइल यात्रा अरबों के लिए हानिकारक है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका का पतन होने जा रहा है। इराक के भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने अपने देश के राजनीतिक दलों से मतभेद समाप्त करने का आह्वान किया है। उत्तरी कोरिया ने कहा है कि चीन के साथ हमारे संबंध टूटने वाले नहीं हैं। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
हमास ने अमरीकी राष्ट्रपति की इसराइल यात्रा को अरब जगत के लिए नुकसानदेह बताया है। फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास के प्रवक्ता ने जो बाइडेन की इसराइल यात्रा को अशुभ बताते हुए इसको अवैध ज़ायोनी शासन के लिए लाभदायक बताया। हाजिम कासिम ने ईरान प्रेस से बात करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मध्य पूर्व यात्रा का उद्देश्य एक सैन्य गठबंधन तैयार करना है। उन्होंने कहा कि ऐसा सैन्य गठबंधन होगा जो हमेशा अवैध ज़ायोनी शासन की सेवा में रहेगा। उन्होंने कहा कि जो बाइडेन की मध्य पूर्व यात्रा से अरबों के हितों को कोई भी लाभ पहुंचने वाला नहीं है। हमास के प्रवक्ता ने बताया कि अवैध ज़ायोनी शासन की विस्तारवादी नीतियों का मुकाबला करने के लिए प्रतिरोध को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों के बीच बोलते हुए अमेरिका की सुरक्षा स्थिति की आलोचना करते हुए कहा कि ये देश अपने पतन की ओर बढ़ रहा है। इसना के अनुसार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को नेवादा राज्य के लॉस वेगास में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज अमेरिका की जो सुरक्षा स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी भी अमेरिका की सुरक्षा स्थिति इस हालत में नहीं पहुंची थी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने पतन की ओर आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि हम अभी भी अपने लोगों और अन्य देशों के साथ लोकतंत्र के बारे में बात करने की हिम्मत करते हैं, लेकिन लोकतंत्र डूब गया है। हमारी सड़कें निर्दोषों के खून से भरी हैं। बता दें कि अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस समारोह में इलिनोइस राज्य के शिकागो में स्थित हाईलैंड पार्क, टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन और हॉलटॉम शहरों और कैलिफोर्निया राज्य के सैक्रामेंटो शहर में हुई घातक गोलीबारी में कम से कम 43 लोगों के हताहत और घायल होने की सूचना है।
हैदर अल अबादी का कहना है कि इराक के राजनीतिक दलों को अपने आपसी मतभेदों को एक किनारे रखना होगा। इराक के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और नस्र गठबंधन के प्रमुख हैदर अल अबादी ने इस देश के राजनीतिक दलों का आह्वान किया है कि अपने आपसी मतभेदों को वे किनारे रखकर सरकार का गठन करें। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इराक आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में विजयी रहा है, उसी प्रकार से वो अन्य संघर्षों में भी जीत हासिल करेगा। हैदर अल अबादी ने इराक के राजनीतिक दलों से ये भी कहा है कि वे देश की खातिर मतभेदों को अलग रखकर राष्ट्र के लिए एक आशा की किरण जलाएं। उन्होंने कहा कि वास्तविक नेता तो वो है जो निजी हितों से ऊपर उठकर केवल राष्ट्र हित में काम करे। उसके लिए जितना महत्वपूर्ण होना चाहिए वो अपने हित, क्षमा कीजिएगा, उसके लिए जनता महत्वपूर्ण होनी चाहिए न कि अपने हित। दूसरी ओर इराक के फतह गठबंधन के प्रमुख हादी अलामरी ने भी आशा व्यक्त की है कि निकट भविष्य में इराक का राजनीतिक संकट समाप्त हो जाएगा।
उत्तरी कोरिया ने घोषणा की है कि चीन के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। चीन के साथ गठबंधन समझौते की 61वीं सालगिरह के अवसर पर उत्तरी कोरिया ने सोमवार को कहा है कि बीजिंग के साथ उसके संबंध कभी भी नहीं टूटने वाले हैं। यूनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार सन 1961 में चीन तथा उत्तरी कोरिया के बीच गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। आज उसकी सालगिरह है। इस संदर्भ में उत्तरी कोरिया के रोंदोंग सिनमुन समाचार पत्र ने अपने लेख में लिखा है कि हालिया कुछ वर्षों के दौरान उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कई बैठकें हुई। मैत्रीपूर्ण वातावरण में होने वाली ये द्विपक्षीय बैठकें चीन तथा उत्तरी कोरिया के बीच सौहार्दपूर्ण एवं स्ट्रैटेजिक संबंधों की परिचायक हैं। समाचार पत्र अमेरिका की ओर संकेत करते हुए लिखता है कि चीन और उत्तरी कोरिया के संबंध शत्रुओं की आंखों में कांटों की तरह खटकते हैं। अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जो चीन और उत्तर कोरिया की दोस्ती से जलते हैं। ज्ञात रहे कि उत्तरी कोरिया के परमाणु एवं मिसाइल कार्यक्रम से मुकाबले के बहाने अमेरिका ने इस देश के विरुद्ध कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं।
आक्रमणकारी सऊदी गठबंधन ने ईद उल अजहा के दिन भी यमन के सादा प्रांत पर बर्बर हमले किए। इन हमलों के कारण आपासी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा। सबा नेट की रिपोर्ट के अनुसार हमलावर सऊदी गठबंधन ने ईद उल अजहा के दिन, जब यमनी मुसलमान ईद की खुशियां मनाने में व्यस्त थे, तभी सादा प्रांत के एक शहर में आवासीय इलाकों पर अपने हमले किए। सऊदी अरब के इन हमलों में एक दर्जन से ऊपर लोग शहीद और घायल हुए, जिनमें से कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि यमन में सऊदी अरब और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए पाशविक हमलों में अब तक हजारों लोग मारे गए हैं तथा हजारों ही की संख्या में लोग घायल हुए हैं, जबकि लाखों लोग विस्थापित होने पर मजबूर हुए हैं। सऊदी गठबंधन द्वारा किए जा रहे बर्बरतापूर्ण हमलों और घेराबंदी के परिणाम स्वरूप यमनी राष्ट्र भोजन और दवा की भारी कमी का सामना कर रहा है।
जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने चुनाव में 76 सीटें हासिल करके बहुमत बाकी रखा है। जापान के दिवंगत नेता शिंजो आबे की पार्टी LDP लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसदीय चुनाव में जीत हासिल करके बहुमत को बाकी रखा है। LPD की इस चुनावी जीत के बाद ऊपरी सदन में उसकी सीटों की संख्या 146 हो गई है। बताया जाता है कि 2013 के बाद से LPD का यह सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने पूर्व प्रधानमंत्री आबे के लिए मौन धारण किया। उन्होंने बाद में कहा कि हमारे नए आर्थिक मॉडल का मकसद देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना है। इस चुनाव में लगभग 52% ही मतदान हुआ। जापानी संचार माध्यमों ने लिखा है कि चुनाव में जनता की भागीदारी का प्रतिशत तुलनात्मक रूप में कम रहा। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को एक चुनावी सभा को संबोधित करते समय इसे देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या की जांच जापान की प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है।
विश्व की जनसंख्या अब 8 अरब होने वाली है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर राष्ट्रसंघ ने रिपोर्ट जारी करके बताया है कि संसार की आबादी जल्द ही 8 अरब हो जाएगी। सोमवार को राष्ट्रसंघ की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि मध्य नवंबर में दुनिया की आबादी 8 अरब हो जाएगी। वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या 7.77 अरब बताई जा रही है। 1.44 अरब की आबादी के साथ चीन विश्व में पहले नंबर पर है, जबकि इस मामले में भारत दूसरे नंबर पर है जिसकी जनसंख्या 1.39 अरब है। बताया जा रहा है कि सन 2023 तक भारत की जनसंख्या चीन से भी अधिक हो जाएगी। इस प्रकार से भारत विश्व की जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश होगा। इस समय दुनिया की आबादी में चीन की भागीदारी 19% है, जबकि भारत की भागीदारी 18% है। बताया गया है कि विश्व में हर मिनट में 270 बच्चे जन्म लेते हैं। इस प्रकार से अब प्रतिवर्ष लगभग 13 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं।
सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में श्रीलंकाई प्रदर्शनकारी से देश के राष्ट्रपति आवास से बरामद मुद्रा नोट की गिनती करते हुए दिखाई देते हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस पैसे को पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने पैसे के बारे में स्थानीय कोर्ट को जानकारी दी है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमाए बैठे प्रदर्शनकारियों ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। इन प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन से बरामद 1.78 करोड़ से ज्यादा का कैश पुलिस को सौंप दिया है। कोलंबो पुलिस ने खुद ही बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने फोर्ट पुलिस स्टेशन को 17,08,000 रुपए नकदी सौंपी है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक ही वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता फैलेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनसंख्या का असंतुलन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन देशों की जनसंख्या ज्यादा होती है वहां पर असंतुलन का मुद्दा भी रहता है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सोमवार को लखनऊ में सीएम आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी ने जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े की शुरुआत करते हुए एक जागरूकता रैली को झंडी दिखाई।
भारत के गुजरात राज्य में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ आ गई है। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण और मध्य गुजरात के जिलों में बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। इसके चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। इन क्षेत्रों से करीब 1,500 लोगों को निकाला गया है। वहीं मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के डांग, नवसारी और वलसाड जिलों में अगले 5 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तो छोटा उदयपुर में बुडली तालुका में रविवार को शाम 5 बजे तक सिर्फ 16 घंटों में 433 मिलीमीटर बारिश हुई है। और इसी के साथ रेडियो थेरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओं राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। श्रोताओं आज सबसे पहले श्रीलंका की बात करते हैं, जहां आर्थिक संकट बहुत विषम और गहन रूप धारण कर गया है। श्रीलंका से आ रही तस्वीरों को नई बगावत का नाम दिया जा रहा है। विरोधी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घरों पर कब्जा कर लिया है और अब वहां से जाने से इनकार कर रहे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने पिछले महीने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है और अब उनके पास खाना और ईंधन खरीदने के लिए भी धन नहीं है। कर्ज चुका न पाने के कारण पहले ही डिफॉल्ट हो चुके श्रीलंका के पास जरूरी चीजों के खरीदने के लिए भी धन नहीं बचा है, जिसके चलते उसने पड़ोसियों भारत और चीन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी मदद मांगी है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इसी साल मई में दफ्तर संभाला था, लेकिन उन्होंने कहा था कि देश रसातल की ओर जा रहा है और उसका पुनर्निर्माण पहाड़ काटने जैसा काम होगा। श्रोताओं दक्षिणी कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों और अलगाववादियों के मध्य झड़प हुई, जिसमें एक प्रसिद्ध कमांडर अपने साथी के साथ मारा गया। भारतीय सुरक्षा बल अपने लिए इसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की शुक्रवार 8 जुलाई को चुनाव प्रचार के दौरान गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। हालांकि सरकार ने चुनाव प्रक्रिया नहीं रोकने का फैसला किया और रविवार को मतदान किया गया। शिंजो आबे विश्व युद्ध के बाद के देश के संविधान में बदलाव करना चाहते थे। शिंजो आबे की मौत के बाद उनकी पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में है कि वो संविधान में बदलाव ला सकती है। श्रोताओं आज सबसे पहले श्रीलंका की बात करते हैं, जहां आर्थिक संकट बहुत विषम और गहन रूप धारण कर गया है। श्रीलंका से आ रही तस्वीरों को नई बगावत का नाम दिया जा रहा है। विरोधी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घरों पर कब्जा कर लिया है और अब वहां से जाने से इनकार कर रहे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने पिछले महीने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है और अब उनके पास खाना और ईंधन खरीदने के लिए भी धन नहीं है। कर्ज चुका न पाने के कारण पहले ही डिफॉल्ट हो चुके श्रीलंका के पास जरूरी चीजों के खरीदने के लिए भी धन नहीं बचा है, जिसके चलते उसने पड़ोसियों भारत और चीन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी मदद मांगी है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इसी साल मई में दफ्तर संभाला था, लेकिन उन्होंने कहा था कि देश रसातल की ओर जा रहा है और उसका पुनर्निर्माण पहाड़ काटने जैसा काम होगा।
श्रीलंका से आ रही तस्वीरों को नई बगावत कहा जा रहा है। विरोधी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घरों पर कब्जा कर लिया है और अब वहां से जाने से इनकार कर रहे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने पिछले महीने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है और उसके पास खाना और ईंधन खरीदने के लिए भी धन नहीं है। कर्ज चुका न पाने के कारण पहले ही डिफॉल्ट हो चुके श्रीलंका के पास जरूरी चीजों के खरीदने के लिए भी धन नहीं बचा था, जिसके चलते उसने पड़ोसियों भारत और चीन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी मदद मांगी है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इसी साल मई में दफ्तर संभाला था। उन्होंने कहा कि देश रसातल की ओर जा रहा है और उसका पुनर्निर्माण पहाड़ काटने जैसा होगा। प्रदर्शनकारियों के बढ़ते दबाव के कारण शनिवार को उन्होंने व राष्ट्रपति राजपक्षे गोटाबाया ने इस्तीफे की पेशकश की थी। श्रीलंका पर 51 अरब डॉलर का कर्ज है और उसका ब्याज चुकाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था का इंजन माना जाने वाला पर्यटन उद्योग पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। 2019 में आतंकी हमलों का डर, उसके बाद कोविड महामारी और डूबी हुई अर्थव्यवस्था के कारण पर्यटक श्रीलंका से मुंह मोड़ चुके हैं। देश की मुद्रा 80% नीचे आ चुकी है, जिसकी वजह से आयात मुश्किल हो गया है और महंगाई आसमान पर है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक खाने पीने की चीजें 57% महंगी हो चुकी है। इस स्थिति का नतीजा है कि देश तेजी से दिवालिया होने की ओर बढ़ रहा है। राजनीतिक भ्रष्टाचार एक समस्या है, जिसने न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था की जड़ें खोदी बल्कि मदद मिलना भी मुश्किल बना दिया है। आम तौर पर श्रीलंका में खाने पीने की कोई कमी नहीं होती, लेकिन अब लोगों का भूखे सोना एक सच्चाई बन चुकी है। सरकारी कर्मचारियों को अगले 3 महीने के लिए हफ्ते में एक अतिरिक्त छुट्टी दी गई है ताकि वे अपना अनाज खुद उगा सकें। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि संकट की कई घरेलू वजह हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार और धन का कुप्रबंधन, जनता का गुस्सा, देश के राष्ट्रपति राजपक्षे और उनके भाई व पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे पर फूट रहा है। इसी गुस्से के कारण महिंद्रा राजपक्षे को पिछले महीने इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन ये हालत कुछ महीनों या हफ्तों में नहीं हुई है। पिछले कई साल से इस देश की हालत लगातार खराब हो रही थी। अप्रैल 2021 में राजपक्षे ने अचानक रासायनिक खाद के आयात को प्रतिबंधित कर दिया। इसका मकसद ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना बताया गया, लेकिन किसानों के लिए यह ऐलान हैरत अंगेज और मुश्किल भरा था। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सरकार ने ऐशो आराम की चीजों के आयात पर रोक लगा दी। इस बीच यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, जिस कारण अनाज और तेल के दाम बढ़ गए और नतीजा ये हुआ कि मई में खाद मुद्रा स्फीति 60% तक पहुंच गई। कुल मिलाकर श्रीलंका सरकार मदद के लिए इधर उधर हाथ पांव मार रही है। उसे सबसे बड़ी मदद भारत से मिली है, जिसने $4 अरब का उधार दिया है। जून में भारत का एक प्रतिनिधि मंडल कोलंबो गया था और अधिक मदद उपलब्ध कराने पर दोनों पक्षों की बातचीत हुई, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे चेतावनी देते हैं कि भारत ज्यादा समय तक श्रीलंका का काम नहीं चला पाएगा।
श्रोताओं, दक्षिणी कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों और अलगाववादियों के मध्य झड़प हुई, जिसमें एक प्रसिद्ध कमांडर अपने साथी के साथ मारा गया। भारतीय सुरक्षा बल अपने लिए इसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं।
दक्षिणी कश्मीर में एक बार फिर भारतीय सुरक्षा बलों और अलगाववादियों के बीच एक मुठभेड़ में। भारतीय सुरक्षा बलों के प्रवक्ता के अनुसार घाटी में सक्रिय छापामार संगठन जैश मोहम्मद का एक मान्य अलगाववादी कमांडर अपने साथी के साथ हताहत हुआ है। पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि सुरक्षा बलों ने एक विशेष सूचना मिलने के तुरंत बाद दक्षिणी कश्मीर के एक क्षेत्र का घेराव किया, जिसके बीच घेरे में आए अलगाववादी छापामारों और सुरक्षा बलों के बीच एक मुठभेड़ आरंभ हुई, जो कई घंटों तक जारी रही। इस मुठभेड़ में अलगाववादी संगठन जैश मोहम्मद का कुक्का नामी कमांडर अपने एक साथी के साथ हताहत हुआ। पुलिस का कहना है कि ये कमांडर पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय था और सुरक्षा बलों को इसकी शिद्दत से तलाश थी। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुरक्षा बलों का इस मुठभेड़ में क्या कोई नुकसान हुआ, इस बारे में पुलिस प्रवक्ता ने कुछ नहीं बताया। इस बीच ईद के दूसरे दिवस भी श्रीनगर प्रशासन ने मार्केटिंग चेकिंग को जारी रखा। उन्होंने कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि कहीं पर ऐसी सामग्री बेची नहीं जा रही है जो मानव को नुकसान पहुंचाए। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा, इस बीच एक बार फिर धार्मिक गुटों के गठबंधन मुतहदा मजलिस उलमा ने कहा है कि श्रीनगर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद और ईदगाह में नमाज ईद पर जो प्रतिबंध घोषित किया गया था वो धार्मिक मामलों में मुदाखलत है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वो इसके विरुद्ध में एक अभियान चलाने जा रहे हैं। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की शुक्रवार 8 जुलाई को चुनाव प्रचार के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि सरकार ने चुनाव प्रक्रिया नहीं रोकने का फैसला किया और रविवार को मतदान किया गया। शिंजो आबे विश्व युद्ध के बाद के देश के संविधान में बदलाव करना चाहते थे।
जापान में पिछले सप्ताह चुनाव प्रचार के दौरान एक बंदूकधारी ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि रविवार को अपर हाउस के लिए हुए चुनावों में उनकी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। आबे की हत्या के 2 दिन बाद चुनावों के लिए मतदान हुआ था, जिसमें सत्ताधारी पार्टी ने 125 सीटों में से 75 सीटों पर सफलता हासिल की थी और इस प्रकार सत्ता पर अपनी पकड़ और मजबूत बना ली। सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके सहयोगियों को चुनाव में 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला है, जिससे पार्टी संवैधानिक सुधारों को आगे बढ़ा सकती है, जिसके लिए शिंजो आबे को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी है। शिंजो आबे की शुक्रवार 8 जुलाई को चुनाव प्रचार के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि सरकार ने चुनाव प्रक्रिया नहीं रोकने का फैसला किया और रविवार को मतदान किया गया। शिंजो आबे विश्व युद्ध के बाद के देश के संविधान में बदलाव करना चाहते थे। वे उस हिस्से को हटाना चाहते थे जो कहता है कि जापान एक शांतिवादी राष्ट्र है और वो आक्रामक हथियारों पर बजट खर्च नहीं करेगा। अब शिंजो आबे की मौत के बाद उनकी पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में है कि वो संविधान में बदलाव ला सकती है। वहीं उनकी हत्या को लेकर जापान की पुलिस ने माना है कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई थी। इसके बाद चुनाव प्रचार के दौरान अन्य नेताओं की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। जापान के मामलों के विशेषज्ञ जेम्स ब्रादी का इस संदर्भ में कहना है, आबे की हत्या के बाद सत्ताधारी पार्टी को लोगों की बड़े पैमाने पर हमदर्दी हासिल हुई और अब वो इस स्थिति में आ गई है कि अपने दिवंगत नेता के सपने को पूरा कर सके और एक शक्तिशाली सेना के गठन के लिए संविधान में जरूरी संशोधन कर सके। शिंजो आबे की एक योजना लोगों के बीच एक बार फिर राष्ट्रवाद की भावनाओं को मजबूत करना था, जिसके कारण देश मीजी साम्राज्य के दौरान क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरा था और उसने चीन और कोरिया तक अपना साम्राज्य बढ़ा लिया था। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बमों की तकलीफ झेलने वाले इस देश की जनता फिर से सैन्य शक्ति बनने में ज्यादा रुचि नहीं रखती है। यही वजह है कि आबे अपना ये सपना पूरा नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर इसके लिए भूमि प्रशस्त कर दी है। अब सत्तारूढ़ पार्टी के पास संविधान में संशोधन के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है और वो इसमें बदलाव करके क्षेत्रीय समीकरणों को पूरी तरह से उलट पलट कर सकती है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अभी आपने राजनीतिक चर्चा सुनी। अब पेश है साप्ताहिक कार्यक्रम विश्व दर्पण। विश्व दर्पण। दोस्तों, विश्व दर्पण के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज हम फिलिस्तीनी गुटों की बढ़ती ताकत और इसराइल की बौखलाहट के विषय पर चर्चा करेंगे। अख्तर रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए। मुसलमानों के पहले क़िबले मस्जिदुल अक्सा और फिलिस्तीनियों के खिलाफ जैसे जैसे कट्टरपंथी इसराइलियों, इसराइली सैनिकों और इसराइली बस्तियों के निवासियों के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह से फिलिस्तीनी प्रतिरोध दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। अभी हाल ही में हमास के नेता इस्माइल हनिया ने कहा था कि हम इस बात की ताकत रखते हैं कि अतिग्रहणकारी ज़ायनी शासन के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में 5 मिनट में 150 से अधिक मिसाइल और रॉकेट बरसा सकते हैं। फिलिस्तीनी प्रतिरोध दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है और न केवल फिलिस्तीनी प्रतिरोध बल्कि क्षेत्र का प्रतिरोध मोर्चा भी मजबूत होता जा रहा है। जबकि दूसरी ओर इसराइल की सुरक्षा दिन प्रतिदिन खोखली होती जा रही है और आए दिन इसराइल के मूल प्रतिष्ठानों पर हमले हो रहे हैं या आग की चपेट में ये आ रहे हैं या फिर उनके अहम संस्थानों में जिसमें मोसाद या अन्य खुफिया संस्थाएं हैं उनमें हैकरों का हमला होता है और पूरी की पूरी मशीनरी वो हैक कर ली जाती है। अभी हाल ही में इसराइल का मेट्रो सिस्टम हैक कर लिया गया। ये केवल फिलिस्तीनी नहीं बल्कि फिलिस्तीन से बाहर बैठे प्रतिरोध के वो जियाले हैं जिन्होंने इसराइल को चैलेंज कर रखा है कि तुम जहां भी जाओगे हमको वहां पाओगे और तुम्हारी हर हरकत पर हमारी नजर है। आज की चर्चा इस बात पर होगी कि फिलिस्तीन का प्रतिरोध कितना मजबूत हुआ है और इसराइल की सिक्योरिटी कितनी कमजोर हुई है। फिलिस्तीन की वर्तमान स्थिति पर तो सबकी नजर है। एक तरफ इसराइल के अपराध हैं और उनमें तेजी आई है और दूसरी ओर फिलिस्तीनी गुटों का प्रतिरोध है और उसकी मजबूती आई है। तीसरी ओर इसराइल के अंदर पाई जाने वाली सुरक्षा कमियां हैं। लगातार इसराइल के अहम प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है।
اس سے پہلے موساد اور انیہ خفیہ ایجنسیوں کی 100,000 سے ادھک فائلوں کو ہیک کر لیا گیا تھا۔ فلسطینی پرتیرودھ کی مضبوطی اور اسرائیل کی سرکشا کمزوری میں کتنا سمبندھ ہے، وچار سنیے تہران میں انتراشٹری معاملوں کے وشیشج ڈاکٹر راشد عباس کے۔
کوئی حکومت اپنے مختلف شعبہ جات میں اس وقت مضبوط یا مستحکم ہوتی ہے جب اس کا اپنا انفراسٹرکچر، ان کا اپنا نظام، ان کا اپنا سیاسی، سماجی اور ثقافتی سسٹم مضبوط ہو۔ اس وقت اس بات کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ غاصب صہیونی حکومت جتنی اس وقت کمزور ہے وہ ماضی میں کبھی بھی ایسے نہیں تھی۔ یعنی آپ کسی بھی حکومت کے کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی مضبوط ہے۔ مثلا اس کا سیاسی نظام ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے، اس کا سیکیورٹی نظام ہے، اس کا نظریاتی جو ویژن ہے وہ، اس کے علاوہ اس کے جو مقامی داخلی اقتصادی مسائل، یہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے۔ پلس یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے رویے کیا ہیں، کہ وہ آیا اپنی حکومت کی مضبوطی کی طرف جا رہے ہیں یا اس کو کمزور کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ دو تین اور بھی انڈیکیٹر ہیں لیکن بات زیادہ پھیل جائے گی، آپ انہیں دو تین انڈیکیٹرز کو اس وقت دیکھ لیں اور پچھلے چند سالوں کا جو ہے اگر آپ موازنہ کر لیں۔ دوسری بات، جو جس بنیاد پہ اس صہیونی حکومت کو کھڑا کیا گیا تھا وہ خالصتاً ایک زائنسٹ نظریے کی بنیاد پہ، یا دوسرے لفظوں میں دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تو وہ یہودی کہتے تھے نا، کہ یہودیت کو ہم نے ایک یہودی نظریات پہ ایک جو ہے وہ ریاست تشکیل دینی ہے اور اس کے اندر یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اور اب اس میں آپ دیکھیں کہ خود یہودیوں کے اندر اس وقت کئی طبقات ہیں، جو یورپ کا یہودی ہے وہ درجہ یک شہری ہے، جو افریقہ کا یہودی ہے وہ بیچارہ وہی سیاہ فام جس طرح وہ امریکہ میں مار کھا رہا ہے وہ اسرائیل میں بھی مار کھا رہا ہے۔ پھر ایشین ہے، ایشین کے لیے عجیب عجیب انہوں نے اصطلاحیں اور عجیب عجیب ان کے لیے کام بنائے ہوئے ہیں کہ ایشین صرف یہ کام کر سکیں، یعنی اس کو بھی تیسرے درجے چوتھے درجے کا شہر۔ جب کسی ریاست کے اندر یہ صورت حال ہو کہ خود ریاست کے شہری تقسیم در تقسیم ہو تو یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔
اسلامی گڑتنتر ایران میں حماس کے پرتندھی ڈاکٹر خالد قدومی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی اور سے غزہ کے پریوشٹن کے باوجود وہاں کی جنتا میں جو سنکلپ اور حوصلہ پایا جاتا ہے وہ آدیوتی ہے۔ اسرائیل نے جس مقصد سے غزہ کا گھراؤ کیا تھا وہ اسے حاصل نہیں کر سکا۔
دیکھیں، ریزسٹنس نے عوام کے دلوں سے نکلے ہو، یعنی تحریک مزاحمت ہے، خواہ حماس ہو یا جہاد ہو یا پہلے کہ یہ عوام کے دلوں سے نکلے ہوئے، سڑک سے نکلے ہوئے، یہ پلس آف دا اسٹریٹ جس کو کہلاتے ہیں، وہاں سے نکلے ہوئے تنظیم، وہاں سے ہوئے انتفاضہ، وہاں سے نکلے ہوئے تحریک ہے۔ تو لذا کہ ہمیشہ دشمن اور دشمن ساتھ دینے والا ایسے موومنٹ سے ان کے ڈر ہے کہ جی آیا ہے کہ یہ ہم اس کے سامنے کر سکتے ہیں، کیونکہ عوام کے جو تائید ہوتا ہے، جو زور ہوتا ہے اس کے سامنے، کہ جتنا مرضی نیوکلیئر پاور بھی یا سپر پاور طاقتوں کا ہے کہ اگر وہ اس کے سامنے ہو نا تو وہ شکست کھائیں گے اور وہ کبھی سامنا نہیں کر سکے، کیونکہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے اور ہمیں پتہ کہ اس جنگ میں حق کا جیت ہوگا۔ 2006 میں دشمن نے، امریکہ نے، امریکہ کے ساتھ اور دشمن رجیم صہیونسٹی جو اسرائیلی رجیم کا جو حامی ہے، ایون اسرائیلی رجیم کا، جب انہوں نے دیکھا کہ حماس جیسے موومنٹ ہے، ایک کرنٹ ہے، ایک رجحان ہے، ایک جذبہ ہے لوگوں کی دلوں میں آیا ہوا ہے کہ لوکل باڈیز میں الیکشن میں ہے، اپنا سوشل ایکٹیویٹیز میں ہے، یونیورسٹی کے اندر ہے، کاؤنسلس کے اندر ہے، میڈیکل کاؤنسل، انجینئرنگ کاؤنسل، انہوں نے سوچا ہے کہ جی ہم اس کے ساتھ جنگ، مطلب انتفاضہ کا، جب انہوں نے سیکنڈ انتفاضہ شروع کیا ہے، اس ریزسٹنس نے اپنی کاروائی کو اور مزید ڈیولپ کر دیا ہے کہ سٹون سے لے کر میزائل تک انہوں نے ڈیولپمنٹ کر دیا، انہوں نے سوچا ہے کہ جی ہم اس کو قابو کریں گے ہے کہ نرم طریقہ سے سافٹ ٹول سے ہے کہ جی ہم الیکشن کے ان کو ہرا دیں گے.
अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की नब्ज टटोल कर विश्व भर में होने वाले परिवर्तनों की तह तक जाने वाला कार्यक्रम विश्व दर्पण. हर हफ्ते सोमवार को
امریکہ اور پشچم کا فلسطین کے بارے میں ہمیشہ سے دوہرا رویہ رہا ہے. فلسطین ہمیشہ سے ہی امریکہ اور پشچم کے دوغلے رویے کا شکار رہا ہے. اسی دوہرے رویے پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر رضی خان کہتے ہیں. نئی دلی کے بدھ جیوی اور پروفیسر ڈاکٹر شاہد پردھان کا کہنا ہے کہ کسی بھی سرکار کی مضبوطی کے کچھ تتو ہوتے ہیں. پچھلے 3.5 سالوں میں اسرائیل میں 4 بار سنسدی چناؤ ہو چکے ہیں. یہ کمزور سرکار فلسطینی موومنٹ کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتی.
ایک دیکھا جائے دنیا کی سیاست میں بہت ساری حکومتیں مستحکم نہیں ہوتی ہے پھر بھی لیکن آگے آگے چیز چلتے. یونیورسٹی حکومت اسرائیل اس میں تھوڑا سا ایک ڈفرنس ہے پرسپشن کے اندر جو مطلب کہ میں متوجہ کروانا چاہتا ہوں ہمارے سننے والے میں. یہ ایک آرٹیفیشل جو گورنمنٹ بنی ہے ایک آرٹیفیشل گورنمنٹ ہے. یہ کون سے پرسپشن پہ بنائی گئی یہ گورنمنٹ, یہ جو حکومت بنائی گئی یہ کون سے پرسپشن میں بنائی گئی کہ یورپ میں امریکہ میں گلف میں کہیں پہ بھی جو یہودی ہے وہ امن سے رہ نہیں سکتا, سیف نہیں ہے. تو کیا ضرورت ہے ہمیں, ایک ایسے کنٹری کی ضرورت ہے جو ان کو سیکیورٹی دے, جو ان کو امنیت دے, جو ان کو مطلب کہ ایک اچھے پولیٹیکل سسٹم کو دے. تو اس وعدے سے یہ نیشن کو بنایا گیا جو آرٹیفیشل نیشن ہے جو مطلب کہ فلسطینیوں کی زمین غصب کر کے بنائی گئی, یہ ایک آرٹیفیشل نیشن کا کریشن ہوا. جب یہ آرٹیفیشل نیشن نے جو پرومس جو دی تھی مطلب کہ جو پرومس سے بنایا گیا وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چور چور ہوتی جا رہی ہے چیزیں. جو یہ بول رہے تھے یہ سیکیورٹی کا, جیسے آپ نے بتایا کہ کس طرح سے ناامن ہو گیا ہے. جو چھوٹے چھوٹے نیشنز کی تو بات دور کی بات ہے کہ کوئی کنٹری سے لڑ جانا, یہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں حمس اور حزب اللہ اور اسلامی جہاد, ان کے خلاف بھی وہ ٹک نہیں پا رہے. آج کے دور میں عوام کے اندر خوف اتنا بڑھ گیا ہے, یہاں پر وہ ہر بار جیسے بھی نیا پرائم منسٹر جو بھی آتا ہے پھر وہ بہتن ہو یا نہنیو ہو وہ بات کرتے ہیں کہ ہم لبنان میں حزب اللہ پہ اٹیک کر دیں گے, ہم ایران پہ اٹیک کر دیں گے, لیکن کئی سالوں سال نکل جاتے ہیں کوئی حرکت نہیں کر پاتے. تو یہ بھی تو مطلب کہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں. تو جو ہمیں یہ پرومس بنائی گئی تھی وہ پرومس ٹوٹتی جا رہی ہے, یہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ وہ پرومس اس طرح سے ختم ہو جائے گی کہ جو لوگ جو جہاں جہاں سے آئے تھے اسرائیل میں رہنے کے لیے وہ لوٹ کر اپنے گھر پہ چلے جائیں گے, اور یہ اسرائیل کا نام و نشان کچھ آنے والے سالوں کے اندر یہ نیست و نابود ہو جائے گا. یہ بہت کلیئرٹی سمجھ میں آ رہی ہے جب یہ رہبر محترم نے کہا تھا کہ 25 سال کے بعد میں اسرائیل نہیں رہے گا. لوگوں کے لیے سمجھنا تھوڑا سا مشکل تھا, یہ نیشن جو ہے وہ دن بر دن کمزور ہوتا جا رہا ہے اور کمزور ہوتے ہوتے اپنے موت کے قریب یہ ہوتا جا رہا ہے, اور ان قریب ان کی یہ جو سسٹم ہے اور یہ نیشن ہے یہ جلدی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ.
پاکستان کے پرسدھ ٹیکہ کار اور لیکھک ڈاکٹر ندیم بلوچ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی راجنیتک ویوستھا بری طرح بکھر چکی ہے. اتنی مشکل سے تو نفتالی بینت نے سرکار بنائی تھی اور وہ بھی نہیں چل سکی.
بہت دلچسپ صورتحال ہے جو اسرائیل کا پارلیمانی نظام ہے, میں کہتا ہوں وہ آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہا ہے. کہ جس طرح سے پروپوگیٹ کیا جاتا ہے, جس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی کوئی اسٹرانگ سسٹم ہے, بہت ہی کوئی ناقابل تسخیر قسم کا نظام ہے ان کا, جس طرف بھی دیکھیں گے. ابھی آپ نے جیسے فرمایا, میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ یہ جو لاسٹ 4 گورنمنٹس ہیں, جو ایک گورنمنٹ ان میں صرف اپنا इन चार गवर्नमेंट्स में जो पहली गवर्नमेंट आई वो 156 डेज की थी, यानी 156 दिन की, और जो दूसरी गवर्नमेंट आई वो 165 डेज की थी, यानी 165 दिन की थी, और जो तीसरी गवर्नमेंट आई वो तकरीबन 386 डेज की थी, और ये जो लास्ट गवर्नमेंट थी ये ऑलमोस्ट साल के राउंड अबाउट जिसके डेज बनते हैं। तो ये इतना ज्यादा जो अदम इस्तेकाम है, इतना ज्यादा जो एक जो उनका सियासी निज़ाम है वो इंतशार का शिकार है, वो आपस में मिल के चलना नहीं चाहते, ये बुनियादी तौर पर अमली तौर पर उस माशरे का आकाश है कि जो बुनियादी तौर पर इसराइल में वजूद रखता है।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपनी सुविधा के अनुसार वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, parstoday.com/hi। और अब प्रस्तुत है सभा का अंतिम कार्यक्रम, सेहत का राज।
सेहत का राज।
दोस्तों, कार्यक्रम सेहत का राज के एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी
और कायम रिजवी
का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, प्रकृति ने मानव जाति को फलों के रूप में जो उपहार दिए हैं वे स्वादिष्ट होने के साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। यही कारण है कि चिकित्सक लोगों को फल खाने की सिफारिश करते हैं। फल आकृति और स्वाद में अलग अलग होते हैं, किंतु अपनी विशेषताओं के कारण ये हमारे लिए बहुत लाभदायक रहते हैं।
दोस्तों, आज हम चेरी के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रकृति की ओर से हमें प्रदान किए गए फलों में से एक चेरी है। चेरी को वैज्ञानिक भाषा में प्रूस एवियम कहा जाता है। चेरी गर्मियों का फल है। ये मीठा और खट्टा दोनों स्वादों में होता है। मीठी चेरी को अधिक पसंद किया जाता है। मीठी चेरी सामान्यतः गहरे ब्राउन रंग की होती है। चेरी गोल आकार का छोटा फल होता है जिसके भीतर छोटा सा बीज पाया जाता है।
ईरान के कई क्षेत्रों में चेरी की पैदावार होती है। चेरी की सबसे अधिक पैदावार अमेरिका में होती है, जिसके बाद तुर्की का नंबर आता है। विश्व में चेरी की पैदावार में ईरान तीसरे नंबर पर है। पूरी दुनिया में हर साल 18 मिलियन टन चेरी पैदा होती है। ईरान से निर्यात की जाने वाली चेरी स्वाद की दृष्टि से बहुत अच्छी मानी जाती है। प्रतिवर्ष ईरान से कम 1000 टन चेरी का निर्यात किया जाता है। ईरान से अधिकांश चेरी रूस भेजी जाती है। ईरानी चेरी का जितना निर्यात रूस को किया जाता है वो 50% होता है, और बाकी 50% चेरी को अन्य देशों को निर्यात किया जाता है।
चेरी फल के पत्ते कटावदार होते हैं। इसका फल छोटा और सफ़ेद होता है। ये फल गुच्छों की शक्ल में होता है। चेरी का बीज छोटा होता है। चेरी की कई प्रजातियां होती हैं, इसलिए इसके रंग भी अलग अलग होते हैं, किंतु ये अधिकांश भूरे रंग की होती है। कहते हैं कि चेरी के पेड़ को अगर उचित स्थान पर लगाया जाए और उसकी सिंचाई समय समय पर की जाती रहे तो ये बढ़कर 10 मीटर तक का हो सकता है। चेरी की पेड़ की उम्र 100 वर्ष तक होती है।
चेरी को अपने अच्छे स्वाद के लिए पसंद किया जाता है। स्वाद में मज़ेदार चेरी सेहत के लिए भी बहुत अधिक लाभदायक है। इसको कई तरह से प्रयोग किया जाता है। चेरी बहुत से पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो शरीर से प्रभावी कणों को दूर करती है। चेरी ऐसा फल है जो बदन की कैलोरी जलाने में मदद करती है।
चेरी ऐसा फल है जो आंखों को स्वस्थ बनाता है। कैंसर के खतरे को भी ये कम करता है। दिल को स्वस्थ रखता है। त्वचा की खूबसूरती बढ़ाने में इसकी भूमिका है। गठिया रोग दूर करता है। रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक है। दिमाग को सुकून देता है। मधुमेह या शुगर में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह शरीर को शक्ति देने के साथ ही कब्ज को भी दूर करता है।
सेब, नाशपाती और आलू बुखारा जैसे फलों की ही भांति चेरी भी सोब्रिटोल प्रकार का फल है। सोब्रिटोल प्राकृतिक शर्करा है। शरीर को इसकी भी आवश्यकता होती है। सोब्रिटोल को पोषक स्वीटनर के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये ऊर्जा प्रदान करता है। यही कारण है कि अपने भीतर मिठास रखने के बावजूद वे लोग जिनको शुगर होती है उनके लिए सोर्बिटोल हानिकारक नहीं होता। अपने भीतर अधिक फाइबर रखने के कारण ये फल कैंसर के खतरे को भी कम कर देता है।
चेरी में पाया जाने वाला फाइबर मैदे के लिए अच्छा होता है। ये पाचन तंत्र को सही रखने में सहायक होता है। चेरी का प्रयोग उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जिनकी किडनी या पित्त में पथरी हो गई है। ये फल मूत्र मार्ग को साफ करके पथरी को पेशाब के जरिए निकालने में मदद करता है। इसी के साथ ये बदन के विषैले पदार्थों को भी निकाल बाहर करता है।
चेरी में विटामिन ए, विटामिन बी और कैल्शियम तथा फास्फोरस जैसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चेरी के भीतर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी शरीर को मजबूत बनाते हैं जिसके कारण मनुष्य के शरीर में सर्दी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, बुखार, खांसी, इन्फेक्शन और कई प्रकार की बीमारियाँ नहीं हो पाती हैं। चेरी के पोषक तत्व मनुष्य के हृदय और उससे संबंधित रोगों की रोकथाम में लाभकारी हैं।
ये पौष्टिक तत्व और विटामिन हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक रहते हैं। खून की रगों के सख्त हो जाने को भी ये रोकते हैं। मेटाबॉलिकल सिंड्रोम वाले रोगियों की चर्बी या वसा और खून की शर्करा को ये चीजें कम करती हैं। चेरी ऐसा फल है जो माइग्रेन से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है क्योंकि इसके भीतर एंटीसाइनिन और कुछ अन्य तत्व पाए जाते हैं।
इसके अतिरिक्त याददाश्त में सुधार और शारीरिक गतिविधियों को तेज करने में भी ये अच्छी होती है। कसरत करने के बाद मांसपेशियों में जो खिंचाव आ जाता है या दर्द होने लगता है उसको ठीक करने में चेरी का रस बहुत अच्छा माना गया है। चेरी और उसके रस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है जो फोड़े, फुंसी और त्वचा की बीमारियों में उपचार का काम करता है। चेरी खून को साफ करने में भी मददगार है।
चेरी में विटामिन ए और बी के साथ ही साथ विटामिन सी और विटामिन ई भी मौजूद होते हैं। यही कारण है कि इसके प्रयोग मनुष्य की त्वचा हर प्रकार के मुहासों और दानों से सुरक्षित रहती है। चेरी केवल त्वचा और पाचन तंत्र के लिए ही अच्छा फल नहीं है बल्कि बालों के लिए भी ये उचित है। इसकी एक विशेषता यह है कि यह सिर की खाल को ताज़ा रखते हुए उसे खुश्क नहीं होने देती। त्वचा के भीतर ब्लड सर्कुलेशन को ये फल नियंत्रित करता है।
इसके भीतर मौजूद पदार्थ आंखों की रोशनी को भी ठीक रखते हैं। चेरी में मौजूद मेलाटोनिन शरीर के भीतर के सिस्टम और सोने तथा जागने के चक्र को सही रखता है। शोध से पता चलता है कि ये फल रक्त के यूरिक एसिड को नियंत्रित रखता है। इसी के साथ ये पीड़ा को भी कम करता है। गाउट के रोगियों में ये फल उसके पुनः वापस आने में बाधा बनता है। گٹھیا کے روگ میں جو سوجن ہو جاتی ہے اس سوجن کو دور کرنے میں چری کی بھومیکا دیکھی گئی ہے۔ یہ گٹھیا کے درد کو بھی کم کر دیتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میٹھی چیری کے بھیتر پائی جانے والی وٹامن سی، اینتھوسائنن اور کیروٹونائٹس جیسے تتو کئی پرکار کے کینسروں کو روکنے میں سہایک سدھ ہوتے ہیں۔
دوستو، چیری کے پھل کو بہت سے ستانوں پر دم کر کے پیا جاتا ہے۔ پراچین سواستھ کے نسخوں میں بتایا گیا ہے کہ سوکھی چیری اور اس کی گٹھلی کو پانی میں ابال کر اس کا جوشندہ تیار کیا جاتا ہے۔ یہ جوشندہ ان لوگوں کے لیے لابھدائک ہوتا ہے جن کو موتر سمبندی کوئی روگ ہو، کیونکہ یہ جوشندہ موتر مارگ کو صاف کر دیتا ہے۔ اس کام کے لیے 30 گرام سوکھی ہوئی چیری کو 12 گھنٹوں تک سادے پانی میں بھگو کر رکھا جاتا ہے۔ 12 گھنٹوں کے بعد اس میں 1 لیٹر پانی ملا کر اسے ابالتے ہیں۔ اس ابلے ہوئے پانی کو ٹھنڈا کر کے دن میں 3 بار پینے سے موتر سمبندی روگوں کا اپچار ہوتا ہے۔
دوستو، ہماری باتوں کو سن کر آپ تو یہ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ چیری میں موجود پوشک تتو اور اس کے اوشدھیے گن منشیہ کے سواستھ کے لیے کئی پرکار سے فائدے مند ہے۔ اس کو پریوگ کر کے ان فائدوں سے لابھانوت ہوا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ چیری کا پھل کسی بھی بیماری کا پورا علاج نہیں ہے، اس لیے اپنی بیماری کے لیے کسی چکتسک کا پرامرش بہت ضروری ہے۔ کاریکرم کا سمے سماپت ہوتا ہے، انومتی دیجیے۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی سبھا میں پرسارت کیے گئے کاریکرم آپ کو کیسے لگے ان کے بارے میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@ws.irib.ir۔ تو اسی کے ساتھ ہماری یہ سبھا اب یہیں پر سمپن ہوتی ہے۔ آپ سبھی سے اب ہم انومتی چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔Thank you.